मुग्ध हो गए
विपक्ष और तटस्थ श्री ज्योतिष जी बाई और
कैसा प्रकार की या सात प्रकार की जो गोपियाँ हैं वो सब मूल श्रीमती राधिका हैं और उनकी कांति सरकार जी जितनी जिसने उसे पार दिखा है वो राधिका जी अपने कार्य से उन गोपियों विभिन्न तरीकों में अपने भाव को प्रकाशित कर कृष्ण को भी उस प्रकार से ये सेवा कर राधा कह क्रिया है आस्वादन कारण आप सब गोपी है रस्ते उपकरण रस्ते उपकरण में आप सब गोपी है राजा जी ही नहीं है उपकरण होने क्या उपकरण उपकरण मैंने उसको सहायता करने वाले और शक्ति जैसे पानी पीते हैं पानी बूंद है उसमें केवड़ा का रस डाल दो चीनी डाल दो इसमें और कर दो ये सब उपकरण हो उसी परिस्थिति में पूजा भी चाहिए हैं मूल है वही कविता कवि कविता भी के रूप में खुद हैं श्रीमती राधिका जी और साधु के रूप में और उनकी जितनी भी कर सकती हैं ऐसा ये भी समझ सकते हो कि जो सेवा मैया भी राधिका जी के भी एक भाव है वो भी उनसे अलग नहीं है इस तरह से जितनी भी गोपियाँ हैं उनकी शायद उनके पत्ते और मिल गए हैं आसपास गोपी है रस्ते को प्रधानतः ये श्रीमती राधिका जी कृष्ण के जो स्वपक्ष की गोपियाँ हैं लंका जी का था इसका वो राधा जी के भावों के अनुरूप क्योंकि पूरे भाव नहीं है उन सबने ये कुछ अधिक मजबूत कर रखती है इसलिए ये स्वपक्ष की है इसलिए विशेष विशेष क्षेत्रों में इन स्वपक्षों के अतिरिक्त और दूसरी गोपियाँ नहीं उतनी है तब ये नई गलियों जो सबसे आयोजित की गई प्रगति या मान लिया कि जैसे जो साधन की गली है तो बहुत उच्च स्थान था वो भी शिक्षा के समान में नित्य शिक्षा के समान में कृष्ण की और राधिका जी की सेवा करते इसमें अंत में राधिका जी की भावना का वर्णन किया उनके साथ अब ये सब गोपियां मिल करके कृष्ण के गृह में शंकर अपने अपने भावों के अनुसार में अपनी भावों की अभिव्यक्ति उससे उन्हें होती जैसे भद्रा कर उनका मुख्य छोड़े बहुत चिंतित छोड़े क्योंकि दो हजार इत्यादि कुछ नहीं थी और उनसे अभी कोई रक्षा मिला नहीं उनको ऐसा मुझे ने क्या हो गया ये जिसके कहते हैं अर्थशास्त्रिक भाव में बहुत प्रदेश करके देखते देखते उनका जो हुआ वो कुछ निम्न को टीका और उनका कुछ और उन्नत कुछ और उनसे भी अधिक हुआ को भी पूछा उसका क्या हुआ सब मन से भी सब कुछ दिल और राधिका इत्यादि के लिए सत्यों की जो सहजियाँ थी उनको क्या हुआ कृष्ण की सारी लीलाओं की स्मृति उनके हृदय में आ गई दुरा और कृष्ण के साथ में उनका पहले का आलाप पहले का नृत्य खोली और उनके रूप सब एकदम और कितने वो अत्यंत अब ये सभी मिल करके गोपियाँ एक उसमें यह नहीं था जीव कानून और उन्होंने ये कौन गोपियाँ ये कह रही गोपियाँ और विधाता सर्वपति गया संयोग्य मित्रम प्रणय में देवी कांत अपता अपाकर
विक्रीड़ितम थे और भक्ति सितम से था। कौन कहा ये नहीं, तात्पर्य क्या, जैसे भी हो इनके भाव जैसे भी हो किंतु कृष्ण से इनका विरह सबका हो रहा है, इसलिए इनका विरह सब एक सांग है। मानो सभी गोपियों को गोपियां अक्रूर ले जा रही, अक्रूर को डायरेक्ट नहीं कर रही हैं, या कृष्ण जा रहे हैं, कृष्ण के इच्छा के विपरीत तो कृष्ण जा नहीं सकते और अक्रूर ले जा रहे हैं, तो यहां पर विधाता को क्यों दोष दे रहे हैं। यदि हम कभी किसी विपत्ति में पड़ते हैं, कोई मर जाता है या कुछ होता है, तो हम दोष किसको देते हैं साधारण रूप में, हे भगवान हमारे बेटे को तुमने ले लिया, भगवान ने लिया, भगवान ने तो नहीं लिया, उसके कर्म है, उसके और चीज है, या किसी ने उसमें मार डाला तो उसको कहें हे भगवान मारा तो उस आदमी ने, और दोष दे रही है विधाता को, भगवान को। तो ऐसे ही ये गोपियां मानो नर लीला का
फॉलो करती हुई ये बता रही हूँ, अनुसरण करती हूँ, अहो विधाता, हे विधाता, तुम्हें कहीं भी ज्ञान में तुम इतनी निश्चित हो, विधाता मैंने जगत की सृष्टि करना ही था, विधि को जो बनाने वाला है, संसार की जो रचना करने वाला है, और इसमें विधियों को जो बनाता है कि जन्मना है, मरना है, मिलन है, विछोड़न है, ये सब नहीं, एक सुंदर सा लड़का दिया, बहुत सुंदर, और जब वो बड़ा हुआ 12 वर्ष का है, सब दिशा में बहुत तेज, बहुत अच्छा, लोगों से भी बढ़ा, और जब अभी बड़ा और नहीं हुआ आई से नहीं मर गया, जैसे कि चित्रकेतु महाराज के पाले। एक आदमी कभी शादी हुई, लड़की भी खुद गए, लड़का भी खुद गए, विवाह शादी करके आ रहे थे, कुछ कुछ बात हुई होगी परस्पर, कैसे हम लोग मिले, और रास्ते में जब घर के निकट पहुंचे तो रास्ते में एक ट्रक ने उनके दोनों को कुचल दिया, वो दोनों के भाई से मर गए, मिलन की तरह में भी, और साथ ही कितना करुण उनका
दिए मर गए। अभी बड़े प्रेम से आवाज करते हुए आ रहा थे, क्या समझते कि जैसे अभी मर जाएगा उनका सम्मान कर जाएगा, नहीं समझ। इसी तरह से संसार में रोज ये भक्ति नहीं ले सकती, मिलन और जीव बताते हैं कि विधाता आपने इस जगत का सृजन किया, इसे दुनिया भी बड़ाई बनाई। न कभी गया तुम तो तुम्हें गया नहीं है, तुम बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल। संयोग मच्छा समय में दहनों को प्राणियों को परस्पर कर्ण के द्वार और मैत्र भाव के द्वार तुम मिला देते हो। कैसे मिलाता है इसके पिता ने हमारे गोस्वामी मेरी बतलाएंगे अभी उसका अनुवाद किया। कैसे आप देखते हैं कहीं से विवाह शादी होता है, कैसे दो आदमी मित्र बनते हैं, कैसे दोनों में प्रणय होता है एक लड़की और लड़के में, भाई बहन में, माता पिता में प्रणय होता है। और मित्रता इसके बाद में मित्रता बंधुत्व एक दूसरे के उपकार करने वाले होते हैं, एक दूसरे को कृषि से उनके लिए कार्य करते हैं समय के द्वारा, मित्रता के द्वारा बंधुत्व। बंधुत्व मैंने क्या बंधु बंधुत्व जिसमें कोई साथ न हो, कृषि से जो मिलते हैं उनको कहते हैं बंधु। इसलिए और प्रणय मैंने क्या शालीन मालूम होता है जिस रुचि जैसे भागवत के प्रसंग में आता है कबूतर और कबूतर दोनों गाना चल रहे और प्राण से चौकी से चौकी ला करके अपनी पुरानी बीती हुई बातों का स्मरण कर रहे हैं। और इतने में एक दहलिया में एक कुमारक ऐसे जैसा हिरण्यकश्यप को बतला रहा है अपने भाई के मृत्यु के बाद में अपनी उनको और चित्रकेतु के मरने बेटे के मरने के बाद में नारद ऋषि और अंगिरा ये बताया। फिर भी देख सुन करके भी हम लोगों को पढ़ करके सुन करके भी हमारे चित्र में ये सब चीजें नहीं बैठी और यही प्रणय और मैत्रता के साथ रहता है। कुछ दिनों के बाद में जब वियोग होता है तो कब बोल नहीं पाते हैं, देखते हैं रो, समझते हैं, अनुभव नहीं होता है। बुद्धिमान पुरुष इसे सिखा देता है। तो प्रणयिनी ने देवी यहां मिलाकर काम सांस अपकार मिले अभी अभी दोनों में कुछ मित्रता बंधुत्व प्रणय हो रहा था, इतने में ही हुआ क्या विधाता ने दोनों को साथ दिया खेती को जिसके विषम से और बच्चे सितम देखा। जिस प्रकार से बच्चे छोटे और बच्चे सितम इसलिए भरोसा बनाते हैं, किस लिए इसे बिगाड़ देते हैं, किस लिए एक मूर्ति बनाते हैं फिर इसे तोड़ देते हैं, मट्टी का खिलौना इसलिए ऐसा करते हैं। फिर कर सके कोई भी इसमें चेष्टा प्रयोजन नहीं, इस तरह समाल जैसे बच्चे हैं अब ज्ञान बचता ऐसा करते तुम भी ऐसा नहीं कर सकना, दया का कोई भी चिन्ह नहीं, यदि होता तो ऐसे मिला करके और शोक भोगना आरम्भ किया। थाला दे दिया, थाले में रसगुल्ले मिठाई और तरह तरह की चीजें भरी है। अभी जो ही एक ग्रास दो ग्रास आरंभ किया था सामने से उसे क्या हुआ ललक ऐसे ले दिया आश्चर्य से किसी ने। ऐसे ही ये संसार है समझो, यही दिखाता है। तो गोपियां उनको दोष दे रही हैं, जस्वम प्रदर्शित कुंतलाकृतम मुकुंद वक्षम सकपोल उन्नतम शोकापनोद स्मितलेश सुंदरम करोषित परोक्षम असाधकेश। पहले में तो वो बतलाया करुणा नहीं है और दूसरे में बतला रही असाधु से तुमने जो ये किया असाधु कृत्य किया, तो बड़े निष्ठुर निर्दय होकर के ऐसा तुम करते हो, क्या करते हो जब तुमने हमें आंख दी बड़ी सुंदर और उन आंखों के सामने प्रदर्शित है कुल तालाब प्रथम कुल काले काले झुंझरारे अल्कुश द्वार कृष्ण का जो मुखार बिंद है उसका मानो भौरे मजदार कैसा वो तक तपस्वी में आचरण ज्यादा मुस्म रूप लावण्य सार असमय धानन्य चित्तम कितना सुना है दीर्घ सदी कितम अलम परिवर्त सर्वा सद्भाव मापो ये दो श्लोकों से ठीक है चलता कोई हद नहीं उनका रूप कैसा है रूप लामण्य गुण का सार है रूपी में कौन सी ऐसी तपस्या की थी अनन्य सिद्धांत जिसमें आलोचन इत्यादि की जरूरत नहीं और उस मुखार बिंद का रस समय निरंतर था कैसे उनके विकृतियां हैं कैसा मुखार बिंद में कैसा मंद मुस्कान है कैसे पंछी बजाते हैं
कैसा उनका कुटिल दृष्टि है इसका वर्णन कर रहे हैं वो लावण्य सार
असमूर्ध सिद्धम असमूर्ध रूप ऐसा किसी का नहीं है यहां पर वही कह रहे हैं ऐसे रूप को देखने के लिए हमें आंखें दी और वो रूप ही हमारे सामने आया कैसा
कुंडला
की
कुंडला
कुंडल यहाँ पर जल जल करते हैं
लसत कुंडलम गोकुले सारा गोकुल एकदम आकर्षित हो रहा है उनके रूप से मुकुंद भक्तम जिनके सुंदर सुंदर कुंड जैसे प्रस्फुटित हास्य समन्वित ये मुखारविंद है सकपोल उन्नसन कपोल इतने सुंदर हैं गणनस्थ और जिस पर कुंडल उनका तत्समय चुंबन करते हैं यशोदा मैया चुंबन करती हैं गोपियां चुंबन करती हैं और उन्नसम उन्नत नसम नाशिका कैसी है तीन फूल जैसी अत्यंत सुंदर नारायण का भी है किंतु इतने सुंदर नहीं द्वारकाधीश का भी है इतने सुंदर नहीं और विशेष करके गोपियों के समाज में जिस समय कृष्ण हो मनमत मनमत रूप ऐसा रूप को देखने का हमें सौभाग्य मिला कौन कह रही है गोपियां कब कह रही हैं अब कह रही हैं विरह के समय किंतु बात कब की है ये राष्ट्रस्थली में कृष्ण अंतर ध्यान होने के बाद में जब वो रोने लगी तो कृष्ण मनमत मनमत रूप प्रकट करके आए कुछ लज्जित हुए कुछ मुस्कुराते हुए गले में पीताम्बर लटकाए हुए वही बलमाला लेकर के लज्जित से कुछ नीची दृष्टि से कुछ ऊपर में ऐसे देखते हुए गोपियां क्या कर रही हैं और वहां पर बैठे कितना सुंदर हो अब उनको ये समय याद पड़ रही है विरह की दशा मानो कृष्ण वही इस समय सामने आए और ये विधाता तुमने ऐसी सुंदर चीजें दी और सुंदर देखने के लिए कृष्ण को दिया शोकोपनो स्मितलेश सुंदर स्मितलेश सुंदरम आपके इस श्री अंग में किसी अंग की एक विशेष माधुरी का प्रदर्शन खंड कल आंखों के देखने लगी तो आंखों में ही लिपट गई कोई भ्रुकुटी देख रहे हैं तो उसी में उनकी दृष्टि निपट हो गई कोई बंसी बजाते हुए मुखारविंद में उनकी दृष्टि गई तो बस वहीं पर उनकी दृष्टि इधर उधर नहीं और उसमें उन्होंने क्या देखा सारे विश्व की का सौंदर्य का सब कुछ उसी में देखा सारा विश्व का सौंदर्य उसके अंदर अनुभव किया उन्होंने और जिससे उनके शोक टोक सब जग जिस समय में कृष्ण ये मनमत मनमत रूप प्रकट करके उनके कल्पित आसन पर बैठे दुपट्टों पर बैठे उस समय गोपियों का शोक मोह रहा भूल गई सब कुछ एकदम भूल गई पिछले जो कैसे विलाप करके तड़प रही थी विरह में ये सब शोक ये सब कुछ दूर हो गया स्मितलेश केवल स्मितलेश थोड़े से मुस्कान से ये सब कुछ हो जाता है। और करोति परोक्षम असाधु से, और साथ साथ में हम लोग अभी पूर्ण रूप से उनका सौंदर्य का, उनके गति का, विलास का हम लोग रसास्वादन नहीं कर पाए, उसी के भीतर झट वियोग कर दिया। यह तुम्हारा कृत्य जो है अत्यंत असाधु है। क्रूरस्तम अक्रूरम आख्याय आख्याया स्मन या चक्षुर ही दत्तम हर से वताग्यवत जे नैक देशे अखिल सर्ग सौस्तवम तदीय मा द्राक्ष वयम मधुर देश। अभी यहां पर कृष्ण के सौंदर्य को बतला रहे हैं मधुर देश। और तुम है तो यथार्थ में क्रूर, तुम्हारा यह कार्य जो है कृष्ण को ब्रज से ले जाना, यह बहुत क्रूरता का कार्य, अत्यंत निंदनीय है। किंतु तुम अक्रूर बन करके, हे विधाता तुम ये अक्रूर तुम ही हो, अक्रूर कोई और दूसरा, तुम ही अक्रूर का रूप धारण करके नाम रखा अक्रूर, किंतु है तुम क्रूर। क्रूरस्तम अक्रूरमाख्य, अक्रूर की आख्या लेकर, अक्रूर का नाम लेकर के, ये मेरा नाम अक्रूर है। स्म न चक्षुर ही दत्तम हरसे वताग्यवत, आंखें तो दी हमें और आंख के द्वारा कृष्ण के सी अंग के एक देश का हमने दर्शन कर, अखिल सर्ग सौस्तम, सर्ग मानी सृष्टि, अखिल सृष्टि का सौंदर्य जो सार है उसके कृष्ण के एक अंग में ही है, ये दिखना का हमारा सौभाग्य दिया विधाता। किंतु ये मूर्खता तुम्हारी क्या, साथ ही साथ में क्षण मात्र में ही तदियम अध्यक्ष वयम मधुदेश, और ऐसे मधुदेश जो मधुसूदन है उनके दर्शन से हमें वंचित कर दिया। हम तो अभी उनका ये सब कुछ भी रसा स्वादन नहीं कर सकी, अभी तक तुरंत मिले और तुमने साथ ही साथ में ये सब दूर कर दिया, हमारे आंखें ले ली तुमने, आंखें दी और आंखें दिया, आंखें दी जिसे ये रूप देखा। तो यदि कोई कहे कि अक्रूर आया आंख तो लिया नहीं, वो तो कृष्ण को ले गया, तो तुम्हारे आंखें जाने का प्रश्न क्या है, यही आंख लेना है, कृष्ण को ले लिया तो वह है ना, वही आंखों आंख वाला वही व्यक्ति है। अक्रणतां फलविदं न परम विदाम सखा पशुन अनुव्यवेश यथोर्वयस्य वक्त्रं भजेश सुतो अनुबेन जुष्टम जैवा निपीतम अनुरक्त कटाक्षम। जिन्होंने कृष्ण को वनचारण करते, गोचारण करते समय में जाते हुए, गोष्ठ से वन की तरफ में जाते हुए देखा, और देख करके आगे आगे बलदेव जी हैं, क्या हो गया भाई, कौन किया, कौन आदमी है, कौन कोई लड़का है, कान पकड़ करके इसे बाहर कर, ऐसे लड़के सब यहां ना आए मत आए। क्या कह रहा था, आंखों का सार क्या है, यदि कृष्ण को वन में गोचारण करते हुए जाते, आगे आगे बलदेव जी, पीछे पीछे जिनके मुखारविंद में मुरली है और वे जा रहे हों, और कटाक्ष से भरे हुए देख रहे गोपियों की तरफ में देख रहे हैं, उनका मुखारविंद जी उन्होंने नहीं देखा, उनकी आंखें रहना व्यर्थ है। आंखों का यही तात्पर्य है कि कृष्ण का दर्शन, ये सबके लिए, गोपियां तो अपने लिए कह रही हैं, किंतु यहां पर सबके लिए भगवान ने आंख दी, यदि इस आंख के द्वारा भगवान का दर्शन नहीं हुआ तो आंखें बेकार मोर पंख की आंखें हैं, या उस पर कहते कि वज्र पड़ जाए, गिर जाए, उन्नयनों का क्या जरूरत है, उस पर वज्र पड़ जाए जिससे वो नष्ट हो जाए, ये शरीर जिससे कि आंखें भी, ये शरीर का कोई जरूरत नहीं है यदि भगवान का भजन नहीं हुआ, दिन रात आदमी इस काम में लगा बेकार का भोगस, अंत में मर करके चला जाएगा, और तभी हम शरीर के लिए ही करते हैं और इस शरीर में आसक्त रहते हैं। तनिक भी उनको ज्ञान नहीं होता, तनिक भी संसार से विरक्ति नहीं। रोज देखते हैं लाखों ऐसे चीजें और तनिक भी विरक्ति नहीं होती, भगवत भजन की स्पृहा नहीं होती, तो ऐसे शरीर की क्या जरूरत है। अरे गोपियां कर रही हैं जो दिन रात उनकी सेवा करते, वो कहते हम ये शरीर को मिट्टी का शरीर को क्यों भार को बहन करके ले जा रहे हैं, कदन भार कर रही हूँ। और हम लोगों को तनिक भी भजन करने की लालसा नहीं होती, अरे घर में रहो किंतु भजन तो करो, उस घर में क्या जरूरत है यदि कोई भजन नहीं होता। देखते हैं कि पिताजी मर गए कुछ नहीं ले गए, माता जी मर गई कुछ नहीं ले गई, और संसार की गति हम रोज देख रहे हैं, मथुरा में ही लाखों इसके उदाहरण हम देख रहे हैं, फिर भी हमारी चेतना नहीं, भजन में रुचि नहीं। चेन्नई उनको मधुद्वीष कर रही हैं। मधुद्वीष माने क्या होता है, मधुसूदन, मधुसूदन माने क्या, बहुत से अर्थ। मधु दो प्रकार का, एक संसार में आसक्ति जो हमारी है वो ये मधु है, उसको जो काटने वाले हैं उसको मधुसूदन कहते हैं। संसारिक आसक्ति को जो नष्ट कर दे वो कृष्ण के अतिरिक्त और कोई नहीं करता, इसलिए कृष्ण मधुसूदन। दूसरी बात मधुसूदन, मधु मैंने मधु संसार का, गोपियों के प्रेम का मधु, भक्तों के प्रेम का मधु, जो आस्वादन करते हैं उसको तो काटा, भक्तों के साधन काल में जो संसार के प्रति जो आसक्ति है, हम आसक्ति रोज बढ़ाना चाहते हैं संसार के प्रति, किंतु जो काट देते हैं, काटने वाले दो हैं, एक साधु संघ अपने संगति अपने वचनों के कुठार से उसको है, वो क्या प्रसन्न संघ, हाँ व्यासंग उक्ति भी, उक्ति रूपी तलवार से उसकी आसक्ति को छेदन कर देते हैं। छिंदंत को विदा, अपने तत्वपूर्ण इन वैराग्यपूर्ण वाक्यों से हमारा ये आसक्ति को छेदन कर देते हैं, किंतु कृष्ण संपूर्ण रूप से कर देते हैं, इसलिए उनका नाम मधुसूदन। और दूसरा गोपियों के प्रेम रूपी इस मधु का जो आस्वादन करने वाले हैं वो हैं मधुसूदन। यहां पर मधु दिशा है, मधुसूदन दोनों अर्थ में लिया गया, क्या ये कृष्ण ने हमारे साथ में प्रणय के द्वारा प्रीति बढ़ाई, ये विधाता असल में है कौन, ये कृष्ण ही विधाता है, दूसरा विधाता, ये विधाताओं का विधाता है। प्रणय हमारे साथ में प्रेम के साथ में कुछ दिन हम लोग साथ में, और यही कृष्ण इस प्रीति को काट करके और जा रहा है, रो रही है विलाप कर रही है, रथ पर खुद चढ़ रहा देख रहा, उनके तरफ में खुद देख करके आश्वासन लिया, हाँ ठीक है, उनके तरफ देखा नहीं पूर्ण करके, फिर क्या हुआ, गोपियां गिर पड़ी क्या हुई, कुछ नहीं देखा, हमने तथा बढ़ा करके बंदूक बढ़ा करके और फिर उसे काट काट करके जा रहे, इसलिए उनके प्रति उस नाम का मधुसूदन मधुसूदन उसको कटाक्ष कर रहे हैं गोपियां कृष्ण के प्रति भी। अब हम लोग चले व्याख्या की तरफ में, इतना 7 बज गया, 7 बज गया, ठीक हो गया, अब इन्हें बतला रहे हैं जीव गोस्वामी या विश्वनाथ चक्रवर्ती था। पहले तो उन श्लोकों में एक एक पक्ष की स्वपक्ष विपक्ष तटस्थ और सुस्पक्ष है, गोपियों के भावों की अभिव्यक्ति करके बतला दिए किनकी कैसी दशा हो रही है। अब इसमें गोप्या उच्यु माने गोपियां सब बोली, और इसमें ये भेद नहीं दिखलाया कि कौन गोपियां बोली, तो इसका मतलब है इसकी अग्रणी श्रीमती राधिका जी हैं और सब गोपियां उनके पीछे से एक में एक सुर मिलाकर वीरभद्रता को वो अभिव्यक्ति कर रही है, बोल रही है। इधर बीरा की व्याख्या सब में है, कुछ अधिक है कुछ कम है, किंतु ये जो बातें हैं ये साधारण बातें, ये सभी की अभी सभी की ये समझो जैसे उन्हीं की उक्तियां हैं। ओ विधाता तवना क्वचित दया संजोग्य मित्रा प्रणय न देहीन, कहते हैं गोपियां सब रो रही हैं, रो करके विलाप कर रही हैं, कोई आगे पीछे जैसे कि संसार के किसी के शोक में वियोग में जब रोते हैं तो एक साथ नहीं, किंतु गोपियों का कैसा है, एक साथ में एक तान में एक लय में एक स्वर में, गोपियों का स्वर कितना मीठा है, एक स्वर में मिला सके। अभी हम लोग कीर्तन करेंगे तो दो चारों का एक समान मिलेगा और बाकी का कोई इधर से मिलेगा, ध्यान से देखेंगे अलग अलग हो जाएगा, और उनका सबका मिला हुआ एक तान सबका ये अपने दुखों को व्यक्त कर। यदि कोई साधक भजन करते समय उनको इस चीज का ध्यान न रहे कि कृष्ण का हम न जाने कब से कृष्ण को भूले हुए हैं, गुरु की कृपा से हम लोग ये समझें कि हमारा कर्तव्य है भजन करना, हमारे भजन का उद्देश्य कुछ खास होना चाहिए, उसमें यदि विरह की अनुभूति न हो दुख न हो तो वो भजन भजन नहीं है। और ये होगा जब संबंध ज्ञान कुछ आएगा और अनर्थ कुछ जाएगा दूर तभी ये सब। इसलिए देखो रघुनाथ हमारे गोपकिशोर दास बाज महाराज का कैसे कैसे वो रो रहे हैं, कहाँ है वो और अकेले किसी को सुना नहीं रहे, रो रहे हैं कितने जोश और जोश से कह रहे हैं और स्वर से कुठाए गो राधे प्रेममयी राधे राधे, कितना रो रहे हैं। हम लोग सुनते हैं कुछ भी हृदय में नहीं, और कैसे वो रो रहे हैं हृदय से, और कुठा प्रेम कुठाए गो प्रेममयी राधे राधे कृष्ण मन मोहिनी राधे राधे अच्युत। इस प्रकार से कानू मन मोहिनी राधे राधे एक एक भाव आ रहे हैं, रो रहे हैं और ये सब कर रहे हैं। अरे इतने आता है हम तो इतना तो रो ही सकते हैं कि हा हा हमारा कितना दुर्भाग्य कृष्ण का भजन नहीं हो सकता, हमारे अनर्थ दूर नहीं है इसके लिए तो रो सकते हैं, हम रोज देख रहे हैं किंतु कृष्ण भजन की तीव्र लालसा नहीं हो रही। कितनी तरह की कामनाएं हृदय में, अभी पैसे भोगने की, कोई कोई बहुत से लोग हैं मठ में आते हैं देखते हैं कि यहाँ चीजें रखी हैं, कहाँ लोग सब दे जाते हैं प्रेम से यहाँ, और यहाँ से कुछ लोग चुरा करके अपना पॉकेट भरते हैं, कहाँ संसार के लोग बड़े प्रेम के साथ में देते हैं ना, और कोई बक्से को तोड़ करके उसमें से पैसे निकाल करके अपने बताओ कितना दूर चले। किसी को कृष्ण के प्रति इन चीजों के प्रति कोई आसक्ति रुचि नहीं है, गृहस्थों को जितना अपने घर के द्रव्यों के प्रति ममता है कृष्ण के इन चीजों के प्रति ममता नहीं। यदि इन चीजों के प्रति ममता ही नहीं तो भजन कहाँ, ममता होनी चाहिए ना, ये कृष्ण की चीजें हैं, ये हमारे गुरु जी की खड़ाऊ है, ये हमारे कृष्ण की वृंदा देवी का ये है, सबके प्रति ममता का भाव होनी चाहिए, यही से आरंभ होता है भजन। तो इसलिए इन गोपियों के भावों को सुन करके हमें ये होना चाहिए, ये कृष्ण का भजन इसमें नहीं हुआ, हमारी संसारी कितनी प्रकार की आसक्ति हैं, हमारे कितने तरह के कामनाएं हैं वासनाएं हैं, इसके लिए भी दुख नहीं होता है। हम चाहते हैं कि कैसे इसमें रख करके अपना सुंदर अपने एक घर रहे, अटैच बाथरूम हमको मिल जाए, अब बड़े थाट के साथ में रहूं, ऐसा करूं वैसा करूं, इसके लिए दुख कष्ट कुछ अनुभूति नहीं होती। तो अशु पाक रोत रोदन करती हुई व्याकुल होकर के ये गोपियां अपनी पूंजीभूत वेदना, पूंजीभूत माने क्या, पूंजीभूत वेदना निकाल रही है, निकल रही है अपने आप, वो लिखा है ना एक साधुओं के पास में बैठ करके उनके हृदय से तस्मिन महन मुखरितम मधुबी चरित्र पीयूष शेष सहित परिता समन्ति साजे पिवंत निपगाढ़ करना। जो साधु लोग संत लोग भक्त लोग रसिक भक्त लोग क्या श्लोक तस्मिन महन मुखरित महन माने क्या अनुभूति संपन्न अनर्थ दूर जिनका हो गया ऐसे महापुरुषों के हृदय में जो कृष्ण रस कृष्ण कथाएं अपने आप निरंतर दिगलित हो रही हैं मानो ये कैसा है जैसे किसी पहाड़ से निर्झर निकल रहे हैं कभी वो सूखता नहीं मानो सरोवर से ये सब नदियां निकलती हैं पानी कभी नहीं निरंतर पानी का प्रवाह लगा रहता है ऐसे उनके हृदय में भगवान की लीला कथाएं सब हैं निरंतर अपने आप बिना चेष्टा के निकल रही हैं उनको यदि कोई सुने इन लीला कथाओं को तो शोक मोह भय सब कुछ दूर हो जाए अनर्थ सारे दूर और इसके अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय नहीं है सहज भाव से तब भजन करने की लालसा आएगी और ये सब सुनने की इच्छा होगी और निरंतर यही सब भावना आएगी कहने लगे हे विधाता तुम अखिल विश्वान ब्रह्मांड के सब कुछ का समुचित विधान करते हो लोग जन्म लेते हैं क्रमशः वो बड़े होते हैं और बड़े होते हैं धीरे धीरे उनकी शादी होती है विवाह होता है फिर धीरे धीरे अलग होते हैं फिर मर जाते हैं अपने अपने कर्मों का सब भोग करते हैं अच्छा बुरा सब ये विधान किसने किया सूर्य ठीक समय पर उगते हैं समुद्र में समय पर ज्वार भाटा आती है चंद्र उगते हैं दिन में सूर्य उगते हैं ये सब का विधान करने वाला कौन है वही है विधाता हमारे सुख दुखों का नियंता विधान करने वाला कौन है ऐसे मालूम पड़ता है कि वो विधाता है साधारण रूप से ये विधाता तुमने ये सब किया किंतु तुम्हारे राज्य में और इस विधान में दयानाम की कोई एक बूंद भी नहीं लेश मात्र एक गंध भी नहीं है दया की हम तो कहीं नहीं देख रहे यदि होता तो हम देखते हैं जिससे तुम्हारी दया है मिलाया दोनों को बहुत सुंदर जोड़े को मिलाया और साथ ही साथ में बस समाप्त उनको अलग ये तुम्हारी कौन सी दया है मिलाया क्यों एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया घर में और थोड़ा सा बड़ा हुआ चलने फिरने लगा मुस्कुराने लगा ने? और थोड़ी देर के बाद में वो मर गया तो किस लिए दिया उसे तो बांझ होना ही अच्छा था तुम्हारे इस विधान में कहीं भी दया का एक बूंद नहीं है गंध नहीं है यदि होता तो ऐसा तुम निर्दय होकर निर्दय नहीं हो सकते क्या कृष्ण जैसा ऐसी बड़ी संपत्ति इतना रूप इतना सब दिया दर्शन करने के लिए और साथ ही साथ में उनको हमसे वियोग करा दिया इसलिए हम कहती हैं कि तुम्हारे अंदर में दया और माया दोनों नहीं है माया माने प्रीति प्रेम दया और माया तनिक भी नहीं है अवश्य दया शक्ति और सामर्थ्य ये तुम्हारे एकाधारे नहीं तुम्हारे अंदर में नहीं आए की बात नहीं है क्योंकि विश्व ब्रह्मांड सृष्टि का विधान तुमने जो किया सब कुछ जानता है किंतु फिर भी बच्चों की भांति खिलौने बनाते हैं और बिगाड़ देते हैं तुमने ये खिलौना बनाया अपने परितुष्टि के लिए अपने तो तुमने दया तो दिखती नहीं है क्यों बनाया और क्यों मिलाया और क्या फिर अलग कर दिया तुम हृदयहीन हो ममताहीन हो तुम सचमुच में बड़े भारी कुरु आज ही नहीं तक कल गौर प्रमाण ऐसा कोई